Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं उसे ईरान रेडियो ने तैयार किया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने और खुद को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और सम्मेलनों के अधीन मानने के बावजूद बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायोनी शासन ने फिलिस्तीन के असहाय और मजलूम लोगों के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध किए हैं और यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का सम्मान नहीं करता और न ही वो किसी संगठन, सम्मेलन और मानवाधिकार संस्थाओं का प्रतिबद्ध है। दोस्तों, मैं हूं अख्तर रिजवी और बच्चे जिनका बचपन छीन लिया गया पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों पर चर्चा करने जा रहे हैं, खासकर उन कानूनों और नियमों पर जो बच्चों की हिरासत से संबंधित हैं। इस संबंध में हम मानवाधिकार और मानवीय अधिकार कानूनों के मुख्य प्रावधानों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिनमें कैद फिलिस्तीनी बच्चों की स्थिति भी शामिल है, और हम आपको इस संबंध में इजरायली शासन के बारंबार उल्लंघन और गैर जिम्मेदाराना रवैये के बारे में भी आपको बताएंगे। मेहरबानी करके बच्चे जिनका बचपन छीन लिया गया पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में हमारे साथ रहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दो अलग अलग कानूनी सिस्टम्स हैं, लेकिन साथ ही वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। दोनों सिस्टम्स लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा से संबंधित हैं। मानवाधिकार दुनिया के सभी लोगों से संबंधित है और ये कानून व्यक्तिगत है। इसका मतलब यह है कि यह कानून स्वाभाविक रूप से दुनिया भर के सभी मनुष्यों से संबंधित हैं और जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, जातीयता, मूल आदि की परवाह किए बिना सभी लोगों पर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून विशेष रूप से युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और कब्जे से संबंधित है। ये कानून सशस्त्र संघर्ष को नियंत्रित करने, इसके प्रभावों को कम करने और उन लोगों को दुश्मनी से बचाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है जो इन संघर्षों में भाग नहीं लेते हैं या इनसे पीछे हट जाते हैं। सशस्त्र संघर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार दोनों ही लागू होते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल में मुख्य अंतर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सरकारों को किसी आपात स्थिति का सामना करने पर कई मानवाधिकारों को स्थगित करने की अनुमति देता है, जबकि सरकारें कुछ मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकती हैं जिनका सभी परिस्थितियों में सम्मान किया जाना चाहिए। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, यातना और सजा या अमानवीय व्यवहार पर रोक, गुलामी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, कानून की वैधता और अतीत पर नज़र न डालना और विचार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं। इन दोनों कानूनी संस्थाओं को एक दूसरे के पूरक के रूप में बनाया गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लेख जैसे यातना पर रोक या प्रतिबंध का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानून दोनों में किया गया है। संरक्षित व्यक्तियों के रूप में फिलिस्तीनी बच्चों पर और इसी तरह बच्चा होने की हैसियत से इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिनेवा कन्वेंशन है। जिनेवा कन्वेंशन ने युद्ध के दौरान के ज़माने के प्रावधानों की स्थापना की है जो इस समय युद्ध में न रहने वालों की रक्षा और समर्थन करते हैं। 1989 में इस सम्मेलन ने बच्चों को कानून के उल्लंघन के खिलाफ समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के रूप में पहचाना और उन्हें दुनिया के सामने एक कमज़ोर कैटेगरी के रूप में पेश किया। फिलिस्तीनी बाल राजनीतिक कैदियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का मुख्य अनुच्छेद ज़मीन पर युद्ध के कानूनों और नियमों पर 1907 का हेग कन्वेंशन है। ये कानून ज़मीन पर युद्ध के कानूनों और नियमों पर प्रोटोकॉल या हेग प्रोटोकॉल का ही दूसरा नाम है। हेग की कानूनी किताब को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है और जिनेवा कन्वेंशन के अधिकांश प्रावधानों की तरह सभी देशों पर ये लागू होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि हेग के कानूनों पर अमल करना दुनिया के हर देश पर वाजिब है। इस कानूनी किताब का पैराग्राफ 6 दूसरे देश के सैन्य बलों के कब्जे वाले क्षेत्रों के बारे में कहता है। पारिवारिक सम्मान और अधिकार, लोगों के जीवन, व्यक्तिगत संपत्ति, धार्मिक मान्यताओं और साथ ही रीति रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए। इन व्यापक सुरक्षा में वयस्क और बच्चे दोनों ही शामिल हैं। जिनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल भी विशेष रूप से सैन्य संघर्ष और कब्जे के समय कमज़ोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों के लगभग 25 पैराग्राफ बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा पर जोर देते हैं। मिसाल के तौर पर कानून का एक खंड कहता है कि बच्चों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी हमले से बचाया जाना चाहिए। संघर्ष के दोनों पक्षों को बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करनी चाहिए, चाहे ये सुरक्षा उनकी उम्र की वजह से हो या दूसरी वजह से। हेग कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध और युद्ध अपराधों के कानूनों की पहली आधिकारिक घोषणाओं में हैं जो विशेष रूप से बच्चों और वयस्कों दोनों सहित सैन्य संघर्ष और कब्जे के समय में कमज़ोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार कब्जे वाले पक्ष द्वारा हिरासत में लिए गए संरक्षित व्यक्तियों को यातना न देने की बात कही गई है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की त्वरित जांच कराने पर भी बल दिया गया है, जबकि बचाव और कानूनी सलाह तक पहुंच दी जाए, पूछताछ और कार्रवाई के दौरान एक अनुवादक या दोनों पक्षों की जबान समझने वाले की उपस्थिति संभव हो, कानूनी मदद करना, उसी कब्जे वाले क्षेत्र में हिरासत में रखना और उसे किसी दूसरी ज़मीन पर स्थानांतरित न करना, उनके पास बंदी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य के हालात मुहैया होना, आध्यात्मिक सहायता और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा दौरे इत्यादि इन कानूनों में शामिल हैं। अनुच्छेद 76 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बच्चों के उचित उपचार पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि अनुच्छेद 31 में ये भी कहा गया है कि संरक्षित व्यक्तियों पर उनसे या किसी तीसरे पक्ष से जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई शारीरिक या मानसिक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। ये भी कहा जा सकता है कि बच्चों के अधिकारों को वयस्कों के अधिकारों से अलग माना जाना चाहिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया है। वास्तव में ये काम पहली विस्तृत और गहन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कार्रवाई थी, जिसने विशेष रूप से बच्चों के मुद्दे को चर्चा का विषय बना दिया और इस विषय पर अपना पक्ष रखा। इस समझौते ने बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में 3 मूलभूत परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों के आधार पर संरक्षण के तहत सभी व्यक्तियों को अधिकार है, जैसे व्यक्तियों का सम्मान, उनकी गरिमा, उनके पारिवारिक अधिकार, उनकी धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं और उनके रीति रिवाज और परंपराओं का सम्मान किया जाए, उनके साथ हमेशा मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और विशेष रूप से हिंसक कृत्यों या धमकियों और उनकी गोपनीयता के अपमान और आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा की जानी चाहिए। 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के बाध्यकारी दस्तावेजों में बच्चों की स्थिति में बदलाव की बात कही गई थी। इस संदर्भ में एक विशिष्ट इंसानी ग्रुप समूह के रूप में बच्चों के पास कुछ अधिकार हैं और बच्चों की विशेष ज़रूरतें हैं और उन्हें अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए और नुकसानों से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा अधिक होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को लेकर जो सहमति बनी वो पिछली सभी सहमतियों और संधियों से कहीं अधिक थी। केवल 2 देशों अमेरिका और सोमालिया ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, जबकि इसके सिद्धांतों और नियमों को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इसे इतिहास में सबसे अधिक स्वीकृत मानव अधिकार दस्तावेज करार दिया गया। अलबत्ता बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अलावा कई अन्य मानव अधिकारों के साधन, हिरासत में लिए गए बच्चों को सीधे विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें मानव अधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र UDHR, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की संहिता ICCPR और अत्याचार व अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध कन्वेंशन CAT शामिल है। इन साधनों और उपकरणों को निचोड़कर बच्चों के लिए सख्त सिद्धांत और सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और मानवीय कानून में भी शामिल हैं। इसमें हिरासत केंद्रों में राजनीतिक कैदियों के रूप में रखे गए फिलिस्तीनी बच्चों की स्थिति पर लागू अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुख्य सिद्धांत और अधिकार भी शामिल हैं। अपनी स्वतंत्रता से वंचित लोगों के मुद्दे पर इन अधिकारों में एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि आपराधिक कार्रवाइयों का उद्देश्य लोगों को पुनर्स्थापित और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। इन कैदियों के पास प्रमुख और अहम सहायताओं की एक श्रृंखला होनी चाहिए, जिनमें दोषी साबित होने तक किसी व्यक्ति के निर्दोष होने का सिद्धांत, कानूनी सलाह परामर्श, आरोपों का स्पष्टीकरण, निष्पक्ष सुनवाई और हिरासत के दौरान बाहरी दुनिया, विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखना इत्यादि जैसी चीजें शामिल होनी चाहिए। जब भी फिलिस्तीनी बाल कैदियों की बात होती है तो दो महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत दिमाग में आते हैं। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के आर्टिकल में उल्लेखित सर्वोत्तम हित सिद्धांत यानी द बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल, बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में, चाहे संगठनों द्वारा, निजी या सार्वजनिक कल्याण, कानून की अदालतें, सरकारी अधिकारी या कानूनी एजेंसियां कार्य कर रही हैं, बच्चों के सर्वोत्तम हितों को दूसरी सभी चीजों के ऊपर माना जाना चाहिए। दूसरी असल वजह, अंतिम उपाय सिद्धांत यानी द लास्ट रिसोर्ट प्रिंसिपल, जिसका उल्लेख बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के आर्टिकल्स में से एक में किया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों की गिरफ्तारी या हिरासत अंतिम उपाय के रूप में की जानी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी का समय जितना संभव हो उतना छोटा और कम होना चाहिए। दूसरी ओर किसी भी अनुशासनात्मक उपाय के अंतर्राष्ट्रीय मानक जो बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं, जैसे कि पूरी तरह से अंधेरी कोठरी में कैद रखना या एकांत कारावास वगैरह, सख्त वर्जित है। अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण कानूनों में एक महत्वपूर्ण बिंदु यातना की सटीक परिभाषा की कमी है। कानून के अनुसार यातना अपमानजनक, अमानवीय और क्रूर सजाओं की बात ही अलग है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून यातना की व्यापक परिभाषा बयान करने में अक्षम है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा हो सकता है कि एक तरफ सजा और क्रूरता, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार और दूसरी ओर यातना के बीच की रेखा वास्तव में कहाँ है। यद्यपि अत्याचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन का आर्टिकल 1 यातना को परिभाषित करता है, जबकि अत्याचार के विरुद्ध कन्वेंशन की परिभाषा अभी भी अस्पष्ट है और हर कोई अपने हितों के अनुसार इसकी व्याख्या कर सकता है। मिसाल के तौर पर सबसे गंभीर दुख दर्द क्या है, कैसे साबित करें कि जो कुछ किया गया है वो जानबूझकर किया गया था। इस परिभाषा के अलावा अत्याचार के विरुद्ध कन्वेंशन विभिन्न प्रकार की कानूनी सजाओं की वजह से होने वाले दर्द और पीड़ा को यातना से अलग करार देता है और यही काम सरकारों के लिए रास्ते खोलता है। बेशक एक और सवाल यह है कि ये ऐलान कौन करेगा कि स्वीकृत परिभाषा के अनुसार किए गए कामों को यातना माना जाएगा या नहीं। इन सवालों के जवाब बच्चों के अधिकारों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यातना के मानदंडों का मूल्यांकन करते समय अन्य मुद्दों जैसे कि बच्चे की उम्र, शारीरिक स्थिति, परिपक्वता का स्तर, दुर्व्यवहार के अलावा इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इसके क्रियान्वयन और इसकी अवधि पर भी विचार किया जाना चाहिए। यातना की परिभाषा को स्पष्ट करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों ने अब तक यातना की मिसालों को स्पष्ट करने और उसके चरितार्थ को बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए यथासंभव सुरक्षा प्रदान करने के तरीके हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक यातना के शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता अपराध करने वाले हमेशा इस बात से इनकार करने के लिए कि उनका काम यातना है, यातना से संबंधित परिभाषा और चर्चाओं में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हेर फेर और बदल करते हैं। इन अपराधियों में से एक अतिग्रहणकारी इसराइली शासन भी है। दोस्तों, अब तक हमने आपको कैदियों और खासकर बच्चों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में बताया है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि फिलिस्तीनी बच्चों के प्रति इसराइल का व्यवहार कैसा होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कितना दूर होता है। ये बात दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इसराइल के व्यवहार की अमानवीयता और बर्बरता से हटकर उसे किसी भी तरीके से इन अपराधों से रोका नहीं जा सकता और ये त्रासदी इतनी व्यापक है, इसकी असली वजह भी यही है। इस त्रासदी की गहराई को समझने के लिए ये सुनना भी जरूरी है कि कैसे कुछ फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया गया और कैसे उन्हें डिटेंशन सेंटर में ले जाकर कैद कर दिया गया। इन सभी बच्चों की कहानियां इसराइल की क्रूरता का पुख्ता सबूत हैं। उनमें से एक 17 साल का मोहम्मद अल जाबिरी है। दरअसल मोहम्मद उन सैकड़ों फिलिस्तीनी बच्चों में से एक है जिन्हें सुरक्षा कानून तोड़ने के बहाने हर साल इसराइली सैन्य बलों द्वारा गिरफ्तार और कैद किया जाता है। जब मोहम्मद को पहली बार दिसंबर 2000 में पत्थर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तो एक सैन्य अदालत ने उसे 8.5 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। मोहम्मद जैसे अधिकांश कैद किए गए फिलिस्तीनी बच्चों पर इजरायली सैन्य बलों, सैन्य भवनों या यहूदी निवासियों पर पत्थर फेंकने के आरोप हैं। इन बच्चों पर लगने वाले गंभीर आरोपों में इसराइली सैनिकों या सेटलर्स को चाकू से नुकसान पहुंचाना या मोलोटोव कॉकटेल फेंकने का प्रयास करना या राजनीतिक ग्रुप का मेंबर होना इत्यादि की ओर इशारा किया जा सकता है। सन 2000 से पहले फिलिस्तीनी बच्चों पर इसराइल के यहूदी निवासियों के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया जाना दुर्लभ बात थी, लेकिन उसके बाद से ये आरोप बढ़ गए हैं और अधिकतर गिरफ्तारियां इसराइली सेना द्वारा ही की जाती हैं। हालांकि सैन्य आदेश संख्या 898 के अनुसार इसराइली निवासी फिलिस्तीनियों को बिना किसी कानूनी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। फिलिस्तीनी बच्चों को विभिन्न स्थितियों में गिरफ्तार किया जाता है, जैसे बच्चे के घर से, सड़क से, चौकियों से और वास्तविक तथा काल्पनिक अपराध स्थलों से। दूसरी ओर सन 2000 के बाद से इसराइल द्वारा सैकड़ों फिलिस्तीनी लड़कों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और बिना किसी आरोप के उन्हें आखिरकार रिहा कर दिया गया। मोहम्मद अल जाबिरी ये बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई। अगस्त 2001 को सुबह 2 बजे लगभग 30 सैनिकों ने हमारे घर पर हमला कर दिया। सैनिकों ने घर में तोड़फोड़ की, उन्होंने हमारी चीज़ें इधर उधर फेंक दी, उन्होंने खिड़कियां तोड़ दी और हमारी फ़ोन बुक जब्त कर ली। वो मुझे घर की छत पर ले गए और 2 घंटे तक मुझसे उन लोगों के बारे में सवाल पूछते रहे जिन्हें वे गिरफ्तार करना चाहते थे, फिर वे मुझे सड़क पर ले गए। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे हाथों को पीछे से प्लास्टिक की हथकड़ी से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे लगभग 1 किलोमीटर तक आगे चलने पर मजबूर किया। रास्ते में अगर मैं धीरे धीरे चलने लगता था तो वे मुझे पीछे से आगे धकेल देते थे। जब हम पुलिस जीप के पास पहुंचे तो मुझे जीप में धकेल दिया गया, जिसकी वजह से मेरा सर छत से टकराया। मेरा भाई आबिद भी जीप में पहले से ही मौजूद था। उन्होंने हमें गाड़ी के फर्श पर बैठने पर मजबूर किया। हमारे साथ 4 सैनिक पीछे बैठे हुए थे। जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच गए, वे हमें मारते पीटते रहे। उन्होंने हमें मारा पीटा, हमारा अपमान किया और सेक्सुअल हैरेसमेंट की धमकी भी दी। फिर हम सैन्य अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने हमें क्लिनिक स्थानांतरित कर दिया। वहां उन्होंने हमें हाथ और आंखों पर पट्टी बांधकर आंगन में छोड़ दिया। हमने इसी तरह बिना खाए पिए पूरी रात आंगन में बिताई। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने और खुद को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और सम्मेलनों के अधीन मानने के बावजूद बच्चों की हत्या करने वाले सैन्य शासन ने फिलिस्तीन के मजलूम और असहाय लोगों के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध किए हैं और यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का सम्मान नहीं करता है और न ही किसी संगठन, सम्मेलन और मानवाधिकार संस्थाओं का प्रतिबद्ध है। दोस्तों, हालांकि फिलिस्तीनी बच्चों के प्रति ज़ायनी शासन का व्यवहार बहुत ही अमानवीय होता है, ये शासन फिलिस्तीनी बच्चों को हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करते समय नियमित रूप से स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विरुद्ध अक्षम्य और खुले उल्लंघन करता है। इसराइल में फिलिस्तीनी बाल कैदियों से पूछताछ के लिए 3 अहम हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला हथकंडा शबक, यानी इसराइल की सुरक्षा एजेंसी होती है। शबक सरकारी तंत्र के भीतर एक अर्ध स्वतंत्र संगठन है जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। शबक आमतौर पर अन्य इसराइली एजेंसियों द्वारा की गई पूछताछ की निगरानी करता है, लेकिन विशेष रूप से अधिक गंभीर अपराधों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछताछ और जांच पड़ताल करता है। शबक लगातार यातनाएं, मानसिक यातनाएं और दर्दनाक शारीरिक यातनाओं का इस्तेमाल करता है। जब बच्चे अपराध कबूल करते हैं तो शबक उन्हें अपना कबूलनामा दोहराने के लिए पुलिस के पास भेजता है, लेकिन अगर बच्चा ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे आगे की पूछताछ के लिए शबक के पास वापस भेज दिया जाता है। दूसरा हथकंडा पुलिस होती है। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के तहत इसराइल की पुलिस कम आरोपों का सामना करने वाले बाल बंदियों के एक बड़े हिस्से पर काम करती है। हालांकि पुलिस अधिकारी पूछताछ करते हैं, शबक एजेंट पूछताछ प्रक्रिया की निगरानी करते हैं, ऐसे में प्रताड़ना बहुत आम सी बात है। तीसरा हथकंडा आर्मी इंटेलिजेंस होता है। इसराइल की आर्मी इंटेलिजेंस, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, बहुत कठोर शारीरिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, जैसे गंभीर और खतरनाक पिटाई, सिगरेट लाइटर से जलाना और अन्य दर्दनाक शारीरिक यातना वगैरह। शबक के सैनिक फिर से इन प्रक्रियाओं में शामिल हो जाते हैं। यदि वे किसी बच्चे से कबूलनामा प्राप्त कर सकते हैं तो वे उसे अपना दावा दोहराने के लिए पुलिस के पास भेजते हैं। ये पूछताछ के लिए कानूनी कवर प्रदान करता है, क्योंकि अदालतें केवल पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित कबूलनामे को स्वीकार करती हैं। यदि कोई बच्चा पुलिस अधिकारियों के सामने अपना कबूलनामा दोहराने से इनकार करता है तो उसे आगे की पूछताछ के लिए सैन्य खुफिया विभाग में वापस भेज दिया जाता है। ज़ायनी शासन द्वारा फिलिस्तीनी बच्चों से पूछताछ और यातना देने का सिस्टम बहुत क्रूर और वहशियाना है। इसको इस तरह से बयान किया जा सकता है कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर पर इस तरह से अत्याचार नहीं करता। लगभग बिना किसी अपवाद के सभी फिलिस्तीनी बच्चों को यातना के एक या एक से ज्यादा ऊपर जिक्र की गई यातनाओं का शिकार बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में हम फिलिस्तीनी बच्चों की हिरासत में पहले चरण यानी गिरफ्तारी और हिरासत केंद्रों में स्थानांतरण की सावधानी पूर्वक समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अख्तर रिजवी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।